पिछले फ्राइडे को हमने कार्तिक मास के बारे में बताया था और दीपदान का महत्व बताया था हम लोगों को। आज हम बात करेंगे कि, और हमने ये भी चर्चा की थी कि दिवाली क्यों मनाते हैं और दिवाली कैसे मनानी चाहिए, है ना। काफी चीजों पर बात की थी हमने। आज हम बात करेंगे कि दीपावली के दिन कब है, परसों संडे। दिवाली वाले दिन भगवान राम तो अयोध्या पहुंचे ही थे, लेकिन साथ में एक और बहुत अद्भुत लीला हुई थी दीपावली वाले दिन। क्या लीला हुई थी कि भगवान कृष्ण को उनकी माता यशोदा देवी ने रस्सी से बांधा था। तो क्योंकि भगवान कृष्ण को यशोदा माई ने रस्सी से बांधा था, इसलिए इस महीने का जो कार्तिक महीना जो है, इसका नाम दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर का मतलब है दाम और उदर, दाम का मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। दामोदर भगवान का एक बहुत ही सुंदर नाम है, जिसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण को यशोदा माई द्वारा रस्सी से बांधा गया है। तो ऐसा क्यों हुआ था, तो बहुत समय पहले कुबेर पुत्र जो थे, कुबेर के दो पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुबर। जो ये दोनों जो पुत्र थे, और कुबेर की राजधानी का क्या नाम है पता है? हाँ, अलकापुरी, उसकी राजधानी अलकापुरी है। जैसे यमराज की संयम निधि है, जहां पर यमराज जितने भी लोग शरीर छोड़ते हैं, तो अगला शरीर लेने से पहले उनको यमलोक में जाकर उनका यमराज जी का उनको सामना करना पड़ता है, और जो भी अच्छे बुरे कर्म किए उसका हिसाब देना पड़ता है उनको। गरुड़ पुराण में इसका बहुत ही विशद वर्णन है कि कैसे जो दिवंगत आत्मा है उसको यम लोक तक लेके जाया जाता है, और उसमें बताया गया है कि दो ही तरह की आत्माएं होती हैं, एक पुण्य आत्मा और एक पापी आत्मा, है ना। तो बताया गया है कि यमराज जी हैं, उनके दो रूप हैं, उनके एक रौद्र रूप है और एक सौम्य रूप है, और जो पापी जी हैं जिन्होंने पूरा जीवन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य के बीच में बिता दिया, उनको यमराज जी के रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनको यमराज जी बहुत ही सौम्य रूप से मिलते हैं, अपने महल में मिलते हैं, विशेष रूप से उनका स्वागत करते हैं और उनके चरणों को धोते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवत धाम जा रहे हो तो मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। ये दो तरह की जीवात्माएं हैं। जो कुबेर जी हैं, उनके दो पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। क्योंकि अमीर खानदान में पैदा हुए थे, तो उनको आवाज गूंज रही है, संतान थे इसलिए बुरी आदत लग गई थी। और शिव जी के बहुत ही करीबी पार्षद थे ये दोनों, और शिव जी ने उनको परमिशन दिया था कि ठीक है आप यहाँ पर आप जो है कैलाश पर्वत के आसपास आप आ सकते हो और विहार कर सकते हो। तो उन्होंने इसका गलत फायदा उठाया है दोनों ने, मणि कुबेर और नल कुबेर और मणिगिरी। सो नल कुबेर और मणिगिरी जो है उन्होंने शिव जी की इस दयालुता का फायदा उठाया। वहाँ पर वो स्त्रियों को लेकर आते थे और वहाँ पर व्यभिचार करते थे स्त्रियों के साथ, वहाँ पर तरह तरह से आनंद विहार करते थे। और कैलाश के साथ ही जो है मंदाकिनी नदी बहती है। सो एक बार ये दोनों मणिग्रीव और नलकूप बहुत ही शराब के नशे में धुत होकर उस नदी में बहुत सारी स्त्रियों के साथ में उस जल में मंदाकिनी नदी में जो है विहार कर रहे थे, और नग्नावस्था में थे, पता भी नहीं था कपड़े डाले हैं कि नहीं डाले। सो उस समय वहाँ से नारद मुनि निकले उधर से, और नारद मुनि ने उनको इस अवस्था में देखा। तो जैसे ही नारद मुनि वहाँ पर आए तो जो सभी स्त्रियाँ थीं उन्होंने तुरंत अपने जो शरीर है वस्त्र से ढक लिए और नारद मुनि को प्रणाम किया। जबकि मणिग्रीव और नलकूप बिल्कुल होश नहीं था उनको, तो वैसे ही जो बहुत ही जैसे जिद्दी बच्चा होता है ना, कुछ मान सम्मान का ध्यान नहीं है, बड़ों का सम्मान कैसे करना है। सो नग्नावस्था में खड़े रहे नारद मुनि को देखकर भी प्रणाम भी नहीं किया, तो नारद मुनि को बहुत गुस्सा आ गया और नारद मुनि ने उनको श्राप दिया। नारद मुनि ने कहा कि आप लोग बेशर्मों की तरह अपने शरीर का प्रदर्शन कर रहे हो, तो जाओ वृक्ष बन जाओ। सो जो लोग अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं वो अगले जन्म में उनको वृक्ष का रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि वृक्ष नग्न अवस्था में खड़ा रहता है। आप माला करनी है तो बाहर जाके करो, नहीं तो लेक्चर सुनो, दो काम इकट्ठे मत करो, है ना, अच्छा नहीं है। सो जो व्यक्ति इस जीवन में जैसा कार्य करेगा उसके फलस्वरूप उसको अगले जन्म में वैसा ही उसको योनि प्राप्त होगी। तो जो बहुत ज़्यादा ये जो अभिनेत्रियाँ हैं और जो एक्टर्स हैं और आजकल नग्नता का कितना प्रचलन बढ़ता जा रहा है, अगर कोई बोल दे कि शरीर को ढक के रखना चाहिए तो लोग उसी को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं जैसे उसने कोई बहुत बुरी बात कह दी हो। लेकिन वास्तव में स्त्री हो या पुरुष उनको अपना शरीर ढक के रखना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर का प्रदर्शन करेंगे तो अगले जन्म में पेड़ बनना पड़ेगा, और पेड़ का जीवन एक मच्छर की तरह तो होता नहीं है, एक दिन में ख़त्म हो गया कुछ घंटों में। जो पेड़ है उसका हजारों सैकड़ों साल का जीवन होता है, और सर्दी गर्मी धूप बारिश तूफान हर चीज़ को सहना पड़ेगा। आप सब प्लीज़ अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए। क्यों मोबाइल फोन साइलेंट या स्विच ऑफ कर देने चाहिए? क्योंकि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण बात कृष्ण कथा की है, क्योंकि कृष्ण कथा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग जो अनेक जन्मों से कष्ट ही भोगते जा रहे हैं, कृष्ण कथा के माध्यम से हम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो इतने महत्वपूर्ण विषय पे जब चर्चा हो रही हो तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अन्य किसी और बात से हमारा ध्यान भटके नहीं, है ना। क्योंकि कोई एक बात ऐसी हो सकती है जो आपके हृदय को छू जाए और आप अपना जीवन बदल लो। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो अपना जीवन नहीं बदल सकते, नहीं। सो ये जो प्रभुपाद की कृपा से ये श्रील प्रभुपाद बैठे हैं जिन्होंने इस कौन की स्थापना की है, तो श्रील प्रभुपाद के आदेश के अनुसार हमारे जैसे जो भक्त हैं वो जगह जगह जाकर लोगों को भगवान कृष्ण की शिक्षा और भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बता रहे हैं। और क्यों बता रहे हैं? जिससे जो लाभ हमने प्राप्त किया या अनुभव किया वो लाभ आप भी प्राप्त कर सको, है ना। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये जो प्रवचन हो रहा है ये मेरे लिए हो रहा है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पड़ोस वाले के लिए हो रहा है, ये सोचो कि ये प्रवचन मेरे लिए ही किया जा रहा है और इसको सुन के मुझे अपना जीवन बदलना है, है ना। सो भगवान हम बात कर रहे थे कि नारद मुनि ने जो है उनको श्राप दिया नल कुबर और मणिग्रीव को। सो आप कह सकते हो कि एक महात्मा जो है उसको तो गुस्सा आना चाहिए, नहीं, उसको दया का भाव रखना चाहिए, श्राप नहीं देना चाहिए था उनको, नहीं, प्यार से समझा देते। श्राप देने की क्या जरूरत थी कि हजारों साल तक वृक्ष के रूप में खड़े रहो, नहीं। सो माता जी टाटा बाय बाय करने की क्या जरूरत है? आप क्या बेवकूफी वाला आइडिया है टाटा बाय बाय करना? अभी मैंने आधा घंटा हो गया आपको समझाते हुए कि कृष्ण कथा में ध्यान दो, आप भी टाटा बाय बाय कर रहे हो। क्या फायदा हुआ आप लोगों को बोलने का? जो हम बोल रहे हैं आप सुन भी रहे हो या ऐसे मतलब हम भैंस के आगे बीन तो नहीं बजाते? आप तो बोलने का, आप आ ही गए हो अपने घर से तो अच्छी तरह से सुन लो ना क्या है मतलब। आपको दुख प्रकट करना चाहिए जो कृष्ण कथा छोड़ के यार आप टाटा बाय बाय कर रहे हो। अच्छा चलो ये क्या तरीका है। सो हम ये कह रहे थे कि प्रश्न ये है कि नारद मुनि जो है उन्होंने श्राप क्यों दिया, क्यों गुस्से में आ गए? वो उनको श्राप नहीं देना चाहिए था, महात्मा है, साधु है, वैष्णव है, उनको दया दृष्टि रखनी चाहिए थी, श्राप नहीं देना चाहिए था। लेकिन वास्तव में नारद जी का जो श्राप है वो भी वरदान के ही समान था। क्यों? क्योंकि उनको श्राप देकर पहली बात तो नारद जी ने उनको और अधिक अनाचार करने से रोका। अगर नारद जी उनको श्राप नहीं देते तो पूरा जीवन वो इसी तरह व्यसनों में बिता देते, नहीं, पूरा जीवन अनाचार करते रहते। तो पहली बात है कि नारद जी ने श्राप देके उनको और जो पाप जो आचार है उसमें लिप्त होने से रोका, और दूसरी बात यह है कि नारद जी के श्राप के कारण जो है नलकुबर और मणिग्रीव जो दोनों भाई थे उनको भगवान कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो सके। ये सारा वृतांत श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध में आता है। सो जब उनको श्राप मिला तो दोनों घबरा गए, मणिग्रीव और नलकूप। उनको पता था नारद जी की बात तो गलत साबित नहीं होगी, हमें वृक्ष बनना पड़ेगा। तो उन्होंने माफी मांगी दोनों ने। तो नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, भगवान कृष्ण स्वयं अवतरित होंगे और समय आने पर आप दोनों का वो अपने हाथों से उद्धार करें। सो भगवान कृष्ण प्रकट हुए जब गोकुल में, और उन्होंने, आप सबको पता ही है कि मटकी फोड़ दी थी और यशोदा माई को गुस्सा आ गया था, और सबक सिखाने के लिए उन्होंने भगवान कृष्ण को जो है रस्सी से बांध दिया था, है ना? आप सबको पता है ना कथा? किस किस को पता है? हाँ, अच्छा, आपको नहीं पता है? अच्छा, हाथ खड़ी करने में क्या शर्म है? नहीं पता है तो थोड़ा शर्म आना चाहिए, पता है तो हाथ खड़े करने चाहिए कि हाँ हमें पता है। पता होना अच्छी बात है, नहीं? सो अब भगवान कृष्ण उखल से बंधे हुए हैं, हाँ, तो यशोदा माई ने उसको रस्सी से बांधा है सबक सिखाने के लिए। अभी आप ये सोचो कि एक व्यक्ति जो खुद बंधा हुआ है क्या दूसरे के बारे में सोचेगा? वो ये सोचेगा कि मैं कैसे छूटूं, नहीं? लेकिन भगवान कृष्ण रस्सी से बंधे हुए हैं उखल से, तो भी सोच रहे हैं कि मेरे भक्त नारद जो हैं उन्होंने उनको ये दोनों को वरदान दे रखा है, मणिग्रीव और नलकूबर को, कि तुम्हारा उद्धार जो है भगवान के हाथों होगा। तो अब समय आ गया है, हाँ, नारद जी के वचन को पूरा करने के लिए। तो अपने बंधन की भगवान परवाह नहीं कर रहे हैं, भगवान ये सोच रहे हैं कि मैं अपने भक्त का जो वचन है वो कैसे पूरा करूंगा, है ना? सो इसीलिए भागवतम में कहा गया है कि ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर कोई किसी और की शरण आखिर ले ही कैसे सकता है, है ना? जिन्होंने पूतना जैसी राक्षसी जो कि भगवान को मारने की इच्छा से अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगा कर आई थी, उसको भी भगवान ने माँ का दर्जा दे दिया। हाँ, तो और ये पूतना कौन है? कौन थी पूतना पिछले जन्म में? हाँ, क्या? सो बली महाराज की बहन थी पूतना। तो जब भगवान बली महाराज के समय में वामन रूप में आए थे, तो जब छोटे से बालक के रूप में आए बली महाराज के यज्ञशाला में जहाँ पर बलि यज्ञ कर रहा था, तो इतने सुंदर थे कि जो बली महाराज की बहन बैठी हुई थी उन्होंने कहा कितना सुंदर बालक है, हाँ मेरा पुत्र ऐसा होता तो कितना मुझे सुख मिलता, हाँ। तो उसके मातृत्व का भाव जागृत हुआ, लेकिन 5 मिनट में खेल सारा बदल गया। बलि महाराज से उन्होंने, भगवान वामन ने 3 पग जमीन मांगी और एकदम से उरुक्रमा बन गए, हाँ। और 3 पग में, 2 पग में पूरा सब जो त्रिलोक उन्होंने नाप दिया, हाँ। सो और वामन देव ने पूछा बलि महाराज से कि तीसरा पैर कहाँ रखूं, तुमने तो 3 पग जमीन देनी थी, तो तुम्हारा वचन झूठा हो गया? तो झूठे व्यक्ति को सम्मान का कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने सैनिकों से बोला इस झूठे व्यक्ति को रस्सी से बांध दो। तो कहाँ बलि महाराज तीनों लोकों के स्वामी थे और 1 मिनट में पूरा खेल बदल गया, नहीं? और जब बलि महाराज को रस्सी से बांधा जा रहा था तो बलि महाराज की बहन को बहुत गुस्सा आ रहा था, उनका दिल कर रहा था कि इस बच्चे को जान से मार दे, है ना। सो भगवान ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी की, उनके जो मातृत्व का भाव आया उसको भी पूरा किया और जो जान से मारने की उनकी इच्छा आई भगवान को उसको भी पूरा किया, उसको पूतना के रूप में जन्म देकर। सो कहने का मतलब है कि भगवान आपके हृदय में जो भी इच्छाएं हैं भगवान उसको समय आने पर पूरा करेंगे। तो आपका कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य है कि हम कभी भी मन में खराब विचार नहीं लेके आए। क्यों? क्योंकि भगवान सब नोट कर रहे हैं, है ना। आप मन में खराब विचार लेके आओगे तो भगवान कहेंगे ठीक है ये विचार भी पूरा करूँगा समय आने पर। तो खराब विचार को पूरा करने के लिए किसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, किसको? आप लोगों को लेना पड़ेगा ना, नहीं? क्योंकि विचार किसका था, हमारा विचार था। सो अगर हम गलत विचार अपने मन में रखेंगे तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर अपने मन में अच्छा विचार रखेंगे, अगर हम अपने मन में सदैव ये विचार करेंगे, ये भाव लेके आएंगे कि भगवान की भक्ति अच्छे से कैसे करनी है, तो भगवान की भक्ति करने की सबसे अधिक सुविधा कहाँ पर मिलेगी, कहाँ मिलेगी? भगवान के घर में मिलेगी, है ना। सो क्योंकि भगवान की सेवा करने की सबसे अच्छी सुविधा भगवान के घर में ही है, और अगर आपके हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी, भगवान से छल नहीं कर सकते, अगर वास्तव में इच्छा होगी तो भगवान लेके जाएंगे। अगर आप झूठ मूठ सोचोगे कि मुझे भगवान की सेवा करनी है और मन में कुछ और विचार चल रहा होगा तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। सो अगर आपके हृदय में ये भावना होगी कि हमें भगवान की सेवा करनी है, तो जब आप ये शरीर छोड़ोगे तो आपको भगवान अपने घर ले जाएंगे, और भगवान के घर को क्या बोलते हैं, वैकुंठ, है ना। वैकुंठ मतलब जहाँ पर कुछ भी परेशानी नहीं है। सो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अभी नारद जी के वचन पूरा करने का समय आ गया है, तो वो उखल को घसीटते हुए ले गए और दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया उसको, और जोर से खींचा तो वो दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए, भगवान को आँच भी नहीं आई। और जैसे ही वो वृक्ष नीचे गिरे तो वो वृक्ष नीचे गिरते ही उन वृक्षों में से दो बहुत ही सुंदर पुरुष उसमें से प्रकट हो गए, और उनका नाम क्या है, आप में से किनको कुबेर पुत्रों का नाम याद है? मैंने कम से कम 50 बार उसका नाम, उनका नाम बोला, आपको तो पहले से ही पता है ना, आप में से किसी को नाम याद है? ऐसा कैसे हो सकता है, एक नाम भी याद नहीं है दोनों में से? हाँ, ये क्या हो रहा है, आप में से किसी को नाम याद नहीं है? मैंने इतनी बार 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 जान पूछ के वो नाम रिपीट किया मैंने। हाँ चलो, एक नाम है नल कुबर और दूसरा मणिग्रीव। हाँ, इतना कैसे, मतलब आप सुन रहे हो और मैंने कम से कम 25-30 बार ये नाम बोले हैं, आपने एक बार भी नहीं सुना उसको, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोनों भाई प्रकट हो गए, नल कुबर और मणिग्रीव, और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, और उन्होंने क्या बोला, क्या उन्होंने भगवान को शिकायत की पर देखो नारद जी ने हमें वृक्ष बना दिया। हाँ, उन्होंने भगवान को शिकायत नहीं की, उन्होंने बोला कि हम नारद जी के, आप वो किसी को ये ढूंढने आए हैं शायद। हाँ, सो उन दोनों ने भगवान को बोला कि हम नारद जी के बहुत ही ऋणी हैं, हम हमारे पे नारद जी का बहुत उपकार है। क्यों उपकार है? वृक्ष बना दिया तब भी क्यों उपकार है? क्योंकि नारद जी की कृपा से ही ये दोनों जो व्यक्ति हैं, दोनों भाई हैं, भगवान के साक्षात दर्शन कर सके। उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया था। नलकूपर बनीग्रीव ने पूरा जीवन कुछ ऐसा काम नहीं किया था कि भगवान के साक्षात दर्शन कर पाए। उनका सिर्फ एक ही काम था कि उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त नारद जी के दर्शन कर लिए और नारद जी से श्राप मिलने पर उनसे माफी मांग ली, बस। और उन्होंने कुछ भी, आप सोचो कि कोई अच्छा काम किया हो, जो शराब के नशे में धुत रह रहा है व्यक्ति, जो स्त्रियों के साथ अनाचार कर रहा है, वो अच्छा काम कहाँ से करेगा? जिसके दिमाग में अपने पिता के पैसे का घमंड है, और कहा भी जाता है अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे खानदान में अगर पैदा हुआ हो, या कोई बहुत सुंदर हो, या कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, या कोई बहुत धनवान हो, ये चारों में से कुछ भी हो, तो वो व्यक्ति भक्ति करने में बहुत मुश्किल होती है उसको। हाँ, क्योंकि अगर कोई बहुत सुंदर होगा तो जहाँ भी जाएगा लोग बोलेंगे आप बहुत सुंदर हो आप, तो दिमाग खराब हो जाएगा सुन के। अगर किसी के पास बहुत पैसा है वो किसी की बात सुनेगा? वो किसी की बात नहीं सुनेगा। या कोई बहुत बड़े खानदान में पैदा हो गया तो भी किसी की बात नहीं सुनेगा, बोलेगा यार तुम किस खानदान में हो, मैं किस खानदान में हूँ, तुम मुझे कैसे कुछ बोल सकते हो? नहीं। अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाए तो भी उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो बोलेगा यार तू अनपढ़ है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाँ तुझे क्या पता, है ना? सो अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो, सुंदरता हो, अगर बहुत ज़्यादा कोई पढ़ लिख ले या बहुत बड़े खानदान में पैदा हो तो भक्ति करने में बाधा आती है। तो आप लोग जो हो, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप लोग ना तो बहुत ज़्यादा धनवान हो ना ही गरीब हो, है ना? आप लोग बहुत ही इज्जत के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं कि करोड़ों में खेल रहे हो, नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि भूखों मर रहे हैं। सो आप लोग जीवन में बार बार सुख और दुख दोनों का अनुभव कर रहे हो, दोनों का सामना करना पड़ रहा है, सुख और दुख का। तो जब दुख आता है तो आप सोच सकते हो कि हाँ ये जीवन में दुख भी है। जो धनवान व्यक्ति है वो पैसे के बल पे दुख को भी सुख में बदल लेता है, नहीं? कोई बहुत धनवान व्यक्ति है उसको अगर जेल में भी डाल लो तो पैसे के बल पे वहाँ पर भी टीवी मोबाइल सब रख लेता है वो, रिश्वत वगैरह देके, नहीं? लेकिन हम लोग जब दुख का सामना हमें करना पड़ता है तो हमें ये एक विचार हमारे मन में आ सकता है कि इस संसार में दुख भी है। हाँ, ये विचार आना भी बड़ी बात है। वास्तव में इस संसार में दुख भी है, गलत है, इस संसार में दुख ही है। हाँ, ये संसार दुख से भरा हुआ है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जैसे अगर राजा ने किसी व्यक्ति को सजा दी है कि इसको पानी में डुबा डुबा के मार दो, तो सैनिक उसको नदी के किनारे ले गए और उसका सिर पकड़ के जबरदस्ती और पानी के अंदर डुबो दिया, तो सांस नहीं ले पा रहा, छटपटा रहा है, और जैसे ही मरने लगा वैसे सैनिकों ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल दिया। तो व्यक्ति सोचता कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पेड़ हैं, नदी बह रही है, फूल लगे हुए हैं, और इतना सोचता ये एक सेकंड में, और दोबारा सैनिक उसको जो है सिर वापस पानी के नीचे डुबा देते हैं, फिर से तड़पना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसे ही कष्ट हैं,
और खासकर जो जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, उनको ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे ही कभी दाएं घुटने में दर्द निकल आएगा, कभी बाएं घुटने में दर्द निकल आएगा। सो जब मैं छोटा था तो हमारी जो नानी थी वो पंजाब रहा करती थी, तो हम गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, तो बाई चांस अगर हमने पूछ लिया उनसे कि और नानी क्या हाल है, वो आधा घंटा बताती रहेंगी मुझे यहाँ पे दर्द है, ये हाथ में दर्द है, टांग में दर्द है। हम सोचते थे यार कहाँ फंस गए, हाल चाल पूछ के आधा घंटा दिमाग खा गए। लेकिन जब हम अब उनके जो है उस स्टेज पे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो हमें भी पता चल रहा है कि यार जो दर्द होती है ना, ये जब अगर सपोज किसी की कमर में दर्द है, माताओं को बड़ी दिक्कत रहती है कमर दर्द की, सो कहीं पर भी ध्यान नहीं जाएगा, पूरा ध्यान जहाँ पर दर्द हो रहा है उसी जगह पे लगा रहेगा कि कैसे इस दर्द से छुटकारा पाए। नहीं, जो भी मिलेगा, पड़ोसी मिलेगा, रिश्तेदार मिलेगा, उसको बोलेंगे कमर में बड़ा दर्द है कैसे, और जो भी लोग टोटका इलाज बताएंगे सारे करते हैं, है ना। जैसे मुझे जुकाम रहता है, गला खराब रहता है मेरा, तो पिछले हफ्ते एक व्यक्ति मुझे मिला, उसने बोला, उसने कहा आपको तो खांसी है, गला खराब है। मैंने कहा यार गला खराब है मेरा, तो उसने कहा अच्छा आपको एक इलाज बताऊं। मैंने कहा यार मुझे 30 साल हो गए हैं जुकाम से लड़ते हुए, तू ऐसा कुछ बता ही नहीं सकता टोटका जो मैंने नहीं कर रखा हो। तो उसने कहा देखो आप जो आप रोटी खाते हो कि परौठा खाते हो। मैंने कहा रोटी खाता हूँ। तो उसने कहा घी वाली खाते हो कि खुश्क खाते हो। मैंने कहा खुश्क खाता हूँ। कह रहा घी वाली खाओ। मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा जो आप रोटी पे घी लगाओगे ना वो घी गर्म हो जाएगा, वो घी से आप अपनी गर्दन की इसकी मालिश करना। और मैंने कहा यार 20 साल मालिश करता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा तुम ऐसा कोई इलाज नहीं बता सकते जो मैंने नहीं करके रखा। सो जिस व्यक्ति को तकलीफ होती है वो हर जगह हर एक व्यक्ति से पूछेगा यार क्या इलाज करूं, और पूरा उसकी चेतना पूरा ध्यान उसके इलाज में घुसा रहता है उसका। नहीं, सो जिस व्यक्ति को तकलीफ है वो समझ सकता है कि कितना ही पूरे संसार में सुख हो, अगर हमारे शरीर में कोई दुख है या हमारे मन में कोई परेशानी है तो कितना ही आसपास सुख हो कुछ अच्छा नहीं लगता, है ना। कितना ही सुंदर पकवान सामने आ जाए खाने का मन नहीं करता अगर मन में परेशानी है या शरीर में दुख है। नहीं, सो ये जो संसार है इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है और अशाश्वतम मतलब यहाँ पर कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कि पिछले हजारों सालों से जिंदा है, सब कोई 100 में, कोई 50 में, कोई 125 में सब मर जाते हैं, है ना। जो भी पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब हर चीज छूट ही जानी है तो उसमें आसक्ति रखने का क्या प्रयोजन है, आसक्ति रखने का क्या लाभ है। सो नलकूबर और मणिग्रीव ने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया था, सिर्फ एक शुद्ध भक्त के उनको दर्शन हो गए। और हमारे बहुत ही महान आचार्य हैं, उन्होंने कहा भी है कि गंगा परश हैले पश्चाते पावन, कि गंगा का गुण है जो भी गंगा स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए तो लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए कि पाप करते रहो, एक बार जाओ गंगा में डुबकी लगाओ और सारे पाप गंगा जी को सौंप दो। क्यों? क्योंकि मटका खाली करेंगे तो दोबारा भरेंगे, है ना। सो कहते हैं गंगार परश हैले पश्चाते पावन, कि गंगा में तो स्नान के बाद जो है हम हमारे पाप कटेंगे, हम लोग पवित्र होंगे, दर्शने पवित्र करो यही तो मारो। लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्त के दर्शन हो जाए, अगर किसी शुद्ध भक्त से परिचय प्राप्त हो जाए, तो केवल उनको देखने मात्र से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाए। जैसे आप लोग श्रील प्रभुपाद, ये फोटो दिख रही है आपको, हाँ, जो तुलसी महारानी और राधा कृष्ण के चित्र के बीच में है, हाँ, तो ये श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है। सो आप सबने इनका दर्शन कर लिया, आपके सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन आप ये नहीं सोच सकते चलो छुट्टी हुई, आपको ये भी सोचना होगा कि आगे जिंदगी में दोबारा पाप नहीं करते हैं, और अपना जीवन किस तरह से बिताएं कि हम दोबारा पाप नहीं करें, हम अपना जीवन किस तरह से बिताएं कि हम अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर पाएं। तो उसके लिए हमें भगवान और उनके शुद्ध भक्तों की शिक्षाओं पर पालन करना पड़ेगा, शिक्षाएं उनके आदेशों को मानना पड़ेगा। और श्री प्रभुपाद ने कहा कि हरेक भारतीयों को, हरेक व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि वो रोज भगवान की 16 माला का, कम से कम 16 माला का जप करे और 4 नियमों का पालन करे। और वो 4 नियम कौन से हैं? जुआ नहीं खेलना, शराब चाय इत्यादि नहीं पीना, मांसाहार प्याज लहसुन नहीं खाना, और पर स्त्रियां पर पुरुष गमन नहीं करना। तो आप में से ज्यादातर लोग तो जुआ इत्यादि नहीं खेलते, पर स्त्रियां पर पुरुष से नहीं मिलते, लेकिन आप सबको प्रॉब्लम आती है कि चाय कैसे छोड़े या प्याज लहसुन कैसे छोड़े। सो चाय और छोड़ने चाहिए क्यों? छोड़ने का पॉइंट ही क्या है? लहसुन में तो इतने सारे औषधीय गुण होते हैं, लहसुन खाना तो शरीर के लिए अच्छा होता है, तो क्यों छोड़ना चाहिए? इसलिए छोड़ना चाहिए क्योंकि जो चाय है, कॉफी है, प्याज लहसुन, ये तामसी वस्तु है। अगर हम इसको खाएंगे तो हमारी जो बुद्धि है वो तामसी हो जाएगी। सो तीन तरह की बुद्धि होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो क्योंकि प्याज लहसुन चाय कॉफी तामसिक वृत्ति के हैं, तो इसको खाने से, इसका सेवन करने से हमारी जो बुद्धि है वो निम्न स्तर की हो जाएगी, तामसी हो जाएगी। तो उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे प्रॉब्लम ये है कि भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि जिनकी प्रवृत्ति सात्विक होती है वो ऊपर के लोकों में जाता है, जिनकी प्रवृत्ति राजसिक होती है, जो बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहता है, कुएं, तालाब, स्कूल इत्यादि बनाना चाहता है, भंडारे लगाना चाहता है, तो ये राजसिक बुद्धि है। तो ऐसे लोग दोबारा भगवान इस धरती पर उनको जन्म देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तामसी वृत्ति के होते हैं, वो लोग जो है नीचे के लोकों में, पाताल लोकों में, सांप बिच्छू इत्यादि योनियों में पैदा होते हैं। सो हमें प्रयास करना चाहिए कि अपनी बुद्धि में जो तामसी वस्तुएं उनको हम त्यागें, राजसिक को भी त्यागें, और अपनी जो बुद्धि है उसको सात्विक बनाएं। हम अपनी बुद्धि को सात्विक बना सकते हैं जब हम भगवान के दिव्य नामों का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम भगवान के दिव्य नामों का जप करेंगे तो, और ये 4 नियमों का पालन करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो वृत्ति है वो सात्विक होती जाएगी। और जब हम बिल्कुल शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे, जब हमारे भगवान में चेतना हमेशा हम 24 घंटे भगवान के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, उस समय हम मृत्यु के समय भी भगवान को स्मरण कर पाएंगे। और भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा ध्यान करता है सप्रयाति समद्भाव, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, उसे मैं अपने धाम लेके जाता हूँ। यास्ति नास्ति अत्र संशया, इसमें कुछ भी शंका नहीं है, ये बिल्कुल विश्वास के लायक बात है कि अगर हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे, जिस प्रकार अजामिल ने किया था, अजामिल ने मृत्यु के समय नारायण नारायण बोला तो भगवान ने उसकी रक्षा की, हालांकि वो अपने पुत्र को पुकार रहा था। लेकिन इसी तरह अगर हम भी मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे तो इसमें कुछ शंका नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे और हमें अपने धाम लेकर जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।